नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। आपकी जिंदगी का एक लम्हा चुराते हैं, एक वो पड़ाव जब आप ऑफिस से घर पहुंचे, थके हारे घर पहुंचे तो क्या देखते हैं दरवाजा खोलने पर कि दोनों बच्चे घमासान युद्ध में भिड़े हुए हैं। कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई चिल्ला रहा है। ऐसे में आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? कहीं ना कहीं गुस्सा अंदर से बाहर आता है और उस पागलपन में आप भी पागल हो जाते हैं। कितना भी कंट्रोल कर लें लेकिन वो गुस्सा आपके हाथ से या आपके सामने आ ही जाता है। क्या इस गुस्से को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये गुस्सा जायज है? क्या गुस्सा जो है वो हमारे हाथ में है? गुस्सा क्या हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है? क्या कारण होते हैं गुस्से के? डिप्रेशन से जुड़े कितने ही मुद्दों को हमने अपनी पूरी श्रृंखला में तलाशा है, जानने की कोशिश की है कि क्या कारण है कि डिप्रेशन होता जाता है। आज हमने आपसे वादा किया था कि हम गुस्से के ऊपर कुछ ज्यादा बातें करेंगे। क्यों आता है गुस्सा, क्या कारण होते हैं और किस तरह से उसे हम अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर।
नमस्कार।
नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
ओम शांति।
ओम शांति। उसी सिनेरियो की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब की। गुस्सा जो है, अभी तक हम कई बार ये कहते थे कि वो जेन्युइन है, वो आता ही है, कितनी भी कोशिश कर ले गुस्सा आ ही जाता है, स्वतः हो जाता है। अब ये सिचुएशन अगर हम देखते हैं कि अपने ही बच्चे दोनों की आपस में भिड़े हुए हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे लेकिन गुस्सा आ जाता है, वो जो पागलपन जब दिखता है तो हम भी कहीं उसमें पागल होने लगते हैं, क्या इसे कंट्रोल कर सकते हैं?
डेफिनेटली कर सकते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि भी ये आवश्यक नहीं है कि आप गुस्सा करो। ये भी थोड़ा सोचो कि भी गुस्से से क्या उसमें बेनिफिट होना है, आप भी डिस्टर्ब होंगे और बच्चे पीसफुल नहीं होने।
ये हम जानते हुए भी कि गुस्सा मुझे नहीं करना है, वो जो आ जाता है, जो आता ही एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ की तरह मान लेते हैं हम कि एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे मुझे स्नीज करना ही है तो मैं मानती हूँ कि स्नीज अगर मैं करूंगी या छींकूंगी तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सिमिलरली अगर ये सब कुछ मैं देख रही हूँ तो मुझे गुस्सा आएगा ही, क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन है या नहीं? गुस्सा जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में है।
वास्तव में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, वो आपका एक प्रकार से रिएक्शन है। अभी यही सिनेरियो आप देखो कि जैसे आपके घर में हुआ, पड़ोसी के घर में ये होता हो तो आपको गुस्सा नहीं आता। सीन तो वही है परंतु यहां पर आपके इमोशंस अटैच है। आप चाहते थे कि मैं घर जाऊं तभी सब कुछ पीसफुल होना चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, शांति से बैठे हैं, पर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, इसके कारण आपको गुस्सा आया। तो जो मूल कारण है गुस्से का कि जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है तब आपको क्रोध आता है।
बिल्कुल, एक ये कारण बहुत बड़ा सा हमारे सामने आता है कि जब हमारी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं हो रही हैं तब हमें गुस्सा आता है। सिस्टर शिवानी, हमारी इच्छा के कारण नहीं हो रहा जैसा हम चाह रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा, गुस्से को हम जायज मान लेते हैं कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्यों ऐसा नहीं लोग, मैं तो सही कह रही हूं, क्यों ये सही तरीका नहीं है, ऐसे लड़ना थोड़ा अच्छी बात है, तो सही तरीके से जीना चाहिए इन्हें, तो ये क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे और इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है।
जो आपने कहा कि रिफ्लेक्स एक्शन है, इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी लोग ये समझते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस नेचुरल रिएक्शन है, इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सामने सीन है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। क्या ये सेम रिएक्शन आप हर टाइम करेंगे जब भी वो सीन आपके सामने आएगा? नहीं। जिस दिन आप ऑफिस से बहुत अच्छे मूड में आ रहे हैं आपको जो डिस्टर्बेंस लेवल होगा वो कम होगा, जिस दिन आप बहुत अपसेट हैं किसी बात से उस दिन आप छोटी सी बात को देखकर भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। अगर वो एक रिफ्लेक्स इनवॉलेंट्री एक्शन होता, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, स्व इच्छा से या ऑटोमैटिक है, अगर वो ऑटोमैटिक होता तो वो बाहर की परिस्थिति के अनुसार हमेशा हो जाता, जैसे ही झगड़ा देखा ऑटोमेटिक रिएक्शन, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, कभी कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है। हमारी जो इंटरनल एनर्जी लेवल हम उस दिन कैरी कर रहे हैं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अक्यूमुलेट हो गई है, ये बाहर की परिस्थिति सिर्फ एक ट्रिगर होती है, और वो भी हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स बनी हुई हैं कि इनको अगर ठीक करना है अभी तो गुस्सा ही करना पड़ेगा, ये बहुत बिगड़े हुए हैं, इनको अगर चुपचाप बिठाना है तो एक जोर से चिल्ला दो अभी चुपचाप बैठ जाएंगे। दीज ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स जो हमने क्रिएट करके रखे हैं, दिस ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन, लेकिन वो सब कुछ इतनी फास्ट हो जाता है कि वी थिंक दैट यू नो ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, उस समय शायद हम लॉजिकली सोच के गुस्सा नहीं करते, ऑब्वियसली हम वी डोंट गो थ्रू दैट प्रोसेस, लेकिन हमने वो प्रोसेस बहुत लॉजिकली बनाया हुआ है अंदर कि दिस इज द वे इट वर्क्स। इस आप इवन जैसे स्कूल में देखिए, टीचर एंटर करती है, बच्चे जोर जोर से शोर मचाते हैं, वो उन्होंने एक लॉजिकल सोच के प्रोसेस बनाया कि और जोर से चिल्लाती हैं, यू नो, लाउडर देन द नॉइज ऑफ द क्लास टू से प्लीज कीप क्वाइट। एंड यू नो समटाइम्स व्हेन यू कांट शाउट सो लाउडली, आपको डस्टर लेकर जोर जोर से यू नो टेबल पर बैंग करते हैं। तो नॉइज है, उसको आप नॉइज से खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट मैसेज आर वी गिविंग द पीपल कि आप डिस्टर्ब हैं तो मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूं आपके साथ,
और मैं अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं या है एक डिस्टर्बेंस तो उसे लाउडर डिस्टर्बेंस ज्यादा स्ट्रांगली अगर मैं करूंगी तो वो मैं कंट्रोल में ले लूंगी।
इट्स लाइक सेइंग कि ये पोल्यूशन कर रहे हैं, इनकी पोल्यूशन को खत्म करने के लिए मुझे और पोल्यूशन करनी है। इट जस्ट वॉन्ट वर्क लाइक दैट, यू नो। सो इट्स पीस विच विल फिनिश दैट रेस्टलेसनेस रादर देन एंगर विच विल फिनिश दैट।
अगेन यू नो, ये जो हमारे मिथ है, हमारे जो रॉन्ग बिलीफ है कि ये एक रिएक्शन है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, मुझे पता ही नहीं चला, ये इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। कई तरह के गुस्से होते हैं, हम उन कारणों पे आते हैं कि डॉक्टर साहब की क्या क्या वजह है जो गुस्सा हमें आता है। बेसिकली
पहला कारण तो जिस परिस्थिति में भी हमने देखा कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, एक छोटा सा फायदा भी है, किसी ने मेरे वर्कशॉप में भी कहा कि जब मैं गुस्सा करता हूं ना तो मैं औरों को मैनिपुलेट कर पाता हूं। मैं गुस्सा करता हूं, मेरी इच्छा अनुसार होता है, आई एम एबल टू कंट्रोल अदर्स, तो इसलिए भी लोग गुस्सा करते हैं। भले एक शॉर्ट टर्म है परंतु वो छोटा सा ही फायदा है, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है,
लेकिन ये प्रैक्टिकल में दिखाई देता है ना होते हुए।
हाँ, ये बात सही है।
बिल्ड अप द बिलीफ सिस्टम कि इट्स द इजिएस्ट वे टू गेट वर्क डन। आप चला दीजिए काम हो जाएगा।
सबॉर्डिनेट्स के साथ खासकर अगर हम घर पे देखते हैं,
नहीं, इवन हस्बैंड वाइफ के साथ, इवन पेरेंट्स चाइल्ड के साथ, किसी के साथ भी इट वर्क्स ना।
हाउ इट वर्क्स, अगर नहीं आप साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म थोड़ी देखो कि क्रोध से डर निर्माण होता है और डर के कारण आप लोगों को चेंज कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं। परंतु डर जो है वो बहुत ही एक कमजोर मोटिवेटिंग फैक्टर है। डर से लंबा समय काम नहीं हो सकता। जैसे आप चाहो कि भी मेरे डर से बच्चे पढ़े, तो जब तक आप उनके सर पे खड़े हैं वो पढ़ेंगे, परंतु जैसे ही आप और कुछ करने लगे वो भी दूसरे काम।
और जैसा कि आपने कहा कि मोटिवेटिंग फैक्टर, यू नो, सो मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दूसरे को मोटिवेट करने के लिए कोशिश करें ना कि दूसरा काम कर पाए। सो उसके लिए अगर वो मोटिवेटिंग फैक्टर पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। बिकॉज अगेन बीच, ये तो हम कहते ही आ रहे हैं कि थॉट से डेस्टिनी है या बीच से फल तक अगर हम जाते हैं तो द बीच हैज टू बी।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप काम तो करवा लेंगे शायद, लेकिन रिलेशनशिप का क्या हुआ? चाहे वो पेरेंट चाइल्ड है, कोई भी रिलेशनशिप है, उसकी फाउंडेशन तो कमजोर होती जा रही है ना। हर टाइम आपने एंगर को एक मोटिवेटर यूज किया या फियर को मोटिवेटर यूज किया, नेगेटिव ब्रिक आप रखते जा रहे हैं अपने फाउंडेशन के ऊपर। काम ऊपर लेवल पे जो काम है वो होता जा रहा है, हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन फाउंडेशन बहुत कमजोर है तो एक दिन वो
रिलेशनशिप भी क्रैश हो जाएगा एंड दूसरी तरफ प्रोपोगेट हो जाएगा यही थॉट प्रोसेस।
अगर भी नहीं हो रहा है, अगर आप सच में
एक्चुअली वो
क्योंकि ना व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशियल से नहीं करेगा
जी।
जैसे ना आप बच्चा पढ़ रहा है लेकिन जबरदस्ती पढ़ रहा है, कहा तो ये भी पॉसिबल आपको गालियां दे कि भी कैसी माँ है, मुझे खेलने नहीं देती है। यही बात सबॉर्डिनेट के साथ भी होगी,
और वो काम कर रहे हैं उस नेगेटिव एनर्जी के साथ,
कहीं ना कहीं एक नेगेटिव के साथ पूरा हो रहा है। तो दिस एंगर, सो ओके, वन फैक्टर विच कम्स टू आवर माइंड, लाइक हमने जब कहा बात टू कंट्रोल अदर्स, दैट क्रिएट्स एंगर।
नो, टू कंट्रोल अदर्स यू बिकम एंग्री।
हाँ, वी बिकम एंग्री।
और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, मैंने कईयों को पूछा भी है, आप भी अगर कभी लोगों को पूछेंगे, कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि मैं चाहूं वैसे ही होना चाहिए, थिंग मस्ट गो माई वे। आप देखना जिसकी भी ये अगर पर्सनालिटी है तो उसको सदैव ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं। मैं चाहूं कि सदैव मेरी इच्छा के अनुसार हो, ये 100% पॉसिबल नहीं है, और जब भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो मुझे गुस्सा आएगा। और इसके पीछे भी जो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि जब वो व्यक्ति छोटा होता है तब माता पिता ने उनकी हर इच्छा को पूरी की है। उसने पानी मांगा तो उसे दूध दे आ गया, कभी भी उसे फ्रस्ट्रेशन या तो ना नहीं कहा गया, और इसके कारण बचपन में ये स्थिति बन गई कि थिंग मस्ट गो माय वे, और बड़े होने के बाद भी वही जो साइकोलॉजिकल एक सेटअप रही और उसके कारण गुस्सा ज्यादा आता है।
क्या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि बचपन में आई डिड नॉट गेट थिंग्स माय वे, शायद जब मेरे पास पावर नहीं थी, अब जब मेरे पास पावर आई है आई टेंड टू दीज आर वॉट वी टॉकिंग अबाउट के पेरेंट यू नो पेरेंटल कैसे अपब्रिंगिंग है वो कैसे हमारी पर्सनालिटी पर अफेक्ट करती है आगे। कई बार अगर बिल्कुल मेरी यू नो मेरी मर्जी अनुसार अगर नहीं हुआ, आई डिड नॉट गेट टू डू थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डू, फिर जब मैं उस एज पर पहुंचती हूँ आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग माई वे, आई वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीबडी, क्योंकि वो भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
अगेन द पॉइंट विच कम्स इज लाइक वी वाई वी हैव टू नो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज समवेयर दिस इज नॉट गुड। सी व्हेन आई रियलाइज कि मैं इस वजह से एंग्री हूँ कि मेरी तरह से काम होना चाहिए, सो फर्स्ट इज द रियलाइजेशन हैज टू सेट इन, या मुझे खुद ये एहसास होना जरूरी है कि मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ, तभी तो फिर मैं कारणों पे जाऊंगा बेसिकली। वंस आई अंडरस्टैंड द रीजन कैन आई हेल्प इट नाउ,
या बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि नोबडी एल्स विल बी एबल टू डू इट द सेम वे लाइक मी, बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक, everybody is different, and if everybody started doing things the way I do, the world will be very boring. Sab log ek hi tarah se agar kaam karne lag gaye, ek hi tarah se sochne lag gaye, the world will be very boring. आज ये दुनिया इतनी सुंदर इसीलिए है क्योंकि आप अलग हैं और मैं अलग हूँ। अगर आप और मैं एक तरह करने लग गए, we won't be able to sit like this.
डॉक्टर साहब, मैं भी एग्जाम्पल देखिए देना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़े अफसर से मैं एक जगह एक दिन मिली और वो अपने एक सबॉर्डिनेट को बहुत ही बुरी तरह से डांट रहे थे। एक लड़की थी, टाइपिस्ट थी उनकी, और वो बाहर गई और उसके बाद वो एकदम से नॉर्मल हो गए। तो मैंने बोला कि आपने मेरे सामने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी, क्यों क्यों आपने ऐसे किया? कहते ये सात्विक गुस्सा है। गुस्सा भी कई तरह के होते हैं, एंड ही वॉज नॉट एंग्री बेसिकली, ही सेड आई वाज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री, एंड ये सात्विक गुस्सा है कि इसमें मेरे इसके जो मैंने ये गुस्सा किया है उसके अंदर एक उस व्यक्ति के लिए हित छुपा है, क्योंकि वो मैं इतना प्यार देता हूँ कि कई बार वो सर पे चढ़ जाते हैं, तो अब उनको वो उतारना, मतलब पर मेरे सामने किसी बाहरी आदमी के सामने ये करना तो मेरे लिए भी बहुत एम्बारेसिंग है और उस व्यक्ति के लिए तो और भी एम्बारेसिंग होगा। कहते नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक सात्विक गुस्सा है और मुझे ये हमेशा काम आता है। तो उसके बाद उन्हें समझ में आ जाएगा लोगों को इनको कि भाई अगर मेरे साथ आप ये करना चाहते, तो यहां मैं उनको कोई जवाब ही नहीं दे सकती थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर ये फील हुआ कि दिस वाज नॉट राइट समवेयर, आई थिंक फॉर बोथ ऑफ देम दिस वाज नॉट गुड। लेकिन क्या ऐसा होता है कि ये साथ, ही वाज नॉट एंग्री, ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री, सो व्हाट इज दिस एक्चुअली?
बट वन थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट, जो आप जिसको सात्विक गुस्सा कहते हैं ना, साइकोलॉजी में एक दूसरी टर्म है जिसको कहा फेक एंगर, एज अ लास्ट रिसोर्ट। भी पहले और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उन चीजों को अपनाइए, फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो कई बार आप झूठ-मूठ का गुस्सा कर सकते हैं, परंतु बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप अपना आवाज बढ़ाते हैं, कुछ जोर से बोलते हैं, तो अंदर में फीलिंग्स भी आती है।
बट वॉज दिस राइट?
इट इज नॉट राइट, क्योंकि अगर उसे पता है, वो लड़की को पता है कि भी मेरे बॉस ऐसे ही झूठ मूठ ही गुस्सा करते हैं, आवाज बढ़ाते, फिर ठीक है, लेकिन तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर उसे पता है कि भाई ऐसे नाटक कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज आना नहीं है,
और अगर उसे नहीं पता
हो, नहीं पता है तो फिर तो उस पर इफेक्ट होगी। सात्विक गुस्सा कैसे कहा, वो खुद तो फील करेगी ना,
तो वो फील करेगी,
उल्टा उसका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, इसके बाद वो जो काम करेगी एकाग्रता से नहीं कर सकती है, सारा दिन इसी बारे में सोचेगी, वो सही निर्णय नहीं कर सकती है, क्रिएटिव नहीं बन सकती है, तो सात्विक गुस्से जैसी कोई चीज नहीं।
दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई एक्चुअली, कि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार होता है राइटियस गुस्सा, लोग झूठ बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग झूठ बोल रहे हैं, तो क्या मेरे पास ये अधिकार है कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं? लेकिन आई हैव ऑल्सो बीन लाइक दिस, बट सडनली आई एम रियलाइजिंग दैट डू आई हैव द राइट टू बी एंग्री, दिस इज देयर लाइफ।
और इसमें देखिए, ये सोचना है कि गुस्से से क्या लोग सच बोलेंगे? अगर सच बोलेंगे तो भले गुस्सा करो, परंतु क्रोध करने से बच्चे सच नहीं बोलेंगे, उल्टा प्यार से उनको एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चे सच बोलेंगे। सबॉर्डिनेट भी सच नहीं बोलेंगे गुस्से से, उल्टा इसमें तो यह चाहिए कि भी आप चाहते हैं कि बच्चे सच बोले तो आप भी सच बोले, नो यू बिकम ट्रूथफुल, तो ऑटोमेटिकली बच्चे हम जो सिखाते हैं वैसा नहीं सीखते, हम जो करते हैं उससे ऑटोमेटिकली बच्चे सीखते हैं।
इवन ऐसे शिवानी हम अगर वो देखें जो सेलिब्रिटीज अपने कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, बहुत बार ये देखा गया है व्हाट मेक्स यू एंग्री एंड द आंसर इज व्हेन पीपल लाई, तो अगेन यू नो लाइक
अगेन आई एम गिविंग अ जस्टिफिकेशन फॉर माई एंगर। ठीक है, जैसे परमात्मा हमें बहुत सुंदर बात एक यहाँ पे सिखाते हैं कि अगर दूसरे ने गलती की, चलो मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि दूसरे ने गलती की, तो क्या उसकी गलती सुधारने के लिए आप उससे बड़ी गलती करेंगे? यू नो, उसने गलती की, आपने भी गलती की, तो फिर आपको क्या हक रहा उसको ठीक करने का? क्योंकि उसने झूठ बोला, उसने गलती की, आपने गुस्सा किया, आपने गलती की।
लेकिन मैं तो कहता हूँ कि झूठ बोलने से बड़ा तो पाप है ही नहीं, गुस्सा तो कोई पाप ही नहीं है।
गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को, अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सच बोलने का, अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है तब वो सच बोलेंगे, इधर विदर जूनियर और विदर चाइल्ड।
लेकिन इनको हम इस बात का तो एहसास करा दें कि हमें पता है कि आपने सही नहीं बोला है।
नहीं, अगर जब उन्होंने कोई गलती, देखो झूठ कहां से स्टार्ट होता है, हम झूठ कब बोलते हैं, हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर यह है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। जब हमें यह पता होगा कि अगर मैंने सच बताया मुझे डांट नहीं पड़ेगी, इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी,
अगेन ट्रस्ट भी आ जाता है,
ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद, लेकिन उसके पीछे रीजन यही है,
और फिर आदत बनती जाती है धीरे धीरे
धीरे धीरे, सच कार्ड बन जाएगा,
फिर आदत होगी।
तो यहाँ ये हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई झूठ बोले, जो मुझे भी गुस्सा बहुत आता था कि भाई झूठ बोलते हैं तो आई जस्ट कांट टॉलरेट, दिस इज लाइक लॉट ऑफ पीपल सेइंग दिस कि आई जस्ट कांट टॉलरेट, सो व्हाट हैज टू बी डन, क्या करना है?
पहले तो मैं समझता हूँ, और थोड़े ना गुस्से के कारण मैं बता दूं आपको, और जिससे ये है ना झूठ बोलने के, इससे दूसरी एक बात है, अन्याय को कुछ लोग सहन नहीं करते, जब भी अन्याय होता है तो उनको गुस्सा आ जाता है,
गलत हो रहा हो,
हाँ गलत हो रहा हो तो उनको गुस्सा आता है, अभी बोले बात ठीक है, ऊपर से तो यह लग रही है कि भी अन्याय को क्यों सहन करे, गलती को क्यों सहन करे, परंतु फिर भी सोचना यह है कि गुस्से करने से क्या अन्याय कम होगा? गुस्सा अन्याय को कम करने वाला नहीं है। आप भले गांधी जी की तरह कैंपेन करो, नहीं और कुछ करिए, वह राइट है, परंतु क्रोध से आपको भी नुकसान है, सामने वालों को भी हानि है, तो इसके कारण जब अन्याय हो तब भी सोचिए कि और कोई स्ट्रेटेजी को मुझे अपनाना है, कि जिसके द्वारा आपको एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे, क्रोध से नहीं मिलेंगे।
क्रोध एक ऐसा वेपन है,
सेक्शन लगता है,
एंगर इज अ वेपन, इट्स अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है, व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, दैट वेपन डजेंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट
हमें खुद को लगती है,
दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा थोड़ी देर बाद। और डॉक्टर साहब ने तो कितना अच्छा बताया, वो पूरा जो बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है, तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को हानि यू नो मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत इजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा फिर,
सचमुच खत्म कर सकते हैं।
और कुछ कारण भी देखते हैं, क्योंकि थोड़े अगर कारण अच्छे से डिस्कस हुए तो सभी इसका उपयोग भी कर सकेंगे, कुछ हमें छोटे से फायदे भी होते इसलिए लोग गुस्सा करते हैं। एक तो अगर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में मुझे लगता है कि मेरी हार हो रही है, आपकी जीत हो रही है, तो उसी क्षण में गुस्से में आ जाता हूँ, ताकि चर्चा वहीं बंद हो जाए और मुझे हार को स्वीकार नहीं करनी पड़े। ये छोटा सा फायदा है, परंतु वहां भी अपने आप को समझा है कि सबसे अच्छा है कि मैं हार को स्वीकार करूं, ताकि दोबारा मैं अपने लॉजिक को और इम्प्रूव करूंगा।
और हो सकता है जो दूसरा कह रहा है उसके लॉजिक को मैं समझ के उसे इनकॉर्पोरेट कर लूं।
बिल्कुल, दूसरी एक ऐसी भी बात है कि कोई चीज को आप पोस्टपोन कर रहे हैं, आपको कोई काम दिया गया आप नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है जवाब देने का, तो उससे बस थोड़ा समय पहले आप गुस्से में आ जाते हैं, ताकि आपके लिए तैयार बहाना है कि क्योंकि बच्चों ने गुस्सा दिलाया इसके कारण मैं काम नहीं कर पाया। तो ऐसे सूक्ष्म बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, वो एक इंटरनल मैकेनिज्म्स है, उसको हम अंडरस्टैंड करें तो भी बहुत फायदा होगा। और एक चीज यह भी है कि जो लोग अपने आप को इन्फीरियर फील करते, जो हीनता के शिकार है, उनको भी गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि जब वो गुस्सा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है और उसके कारण वो बार बार करते हैं,
एम्पावर्ड फील करते हैं।
हाँ, नहीं तो आमतौर पर वो वीक फील कर रहे हैं, लगता है कि भाई मेरे में कोई शक्ति नहीं है, परंतु गुस्सा करने से उनमें शक्ति आ जाती है,
बाहरी अच्छा शस्त्र लेके, जैसे आपने कहा बाहर वो एक शस्त्र लेके एक वेपन की तरह
यूज करते हैं। और कुछ अगर कारण देखने कि जब आपको नींद की कमी है, नींद आपको ठीक से नहीं आई, कब आपको बहुत भूख लगी है, जो लोग बीमार है ज्यादा, स्पेशली बूढ़े लोग की भी जो लंबे समय से बीमार है, तो भी आप देखेंगे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो दूसरों पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, शायद अपने आप से ऐसी उनकी स्थिति है, क्योंकि बीमारी के कारण ही वो अपने आप को वीक महसूस करते हैं। इन सब कारणों को एक बार अच्छे से समझना चाहिए, और जब आपको समझ में आ जाए कि मुझे क्रोध क्यों आता है, तो फिर उसका निवारण सचमुच जो आप पूछ रहे हैं वो भी पॉसिबल है।
तो मतलब पहला जो मुकाम हमें तय करना है वो है कि कारण तक पहुंच जाए, उसके बाद हमारे जो निवारण की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो निवारण इज अगेन सेल्फ काउंसलिंग कैन बी रियली हेल्पफुल
एंड अंडरस्टैंडिंग। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा था। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल, सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
और जो सरल सी बात, तो हम बच्चे थे तब से हमको ये बताई गई है कि जब गुस्सा आए तब तो उसको पोस्टपोन कर,
दस्तगिर लो, पानी पिलो,
कुछ करो, ये जो दे वर्क, इफ यू रियली डू इट एवरी टाइम, सिर्फ हमको राइट मोमेंट पर करना चाहिए।
एक्चुअली वो पॉज जो है वो आपको एकदम से इंटरनलाइज कर लेगा कि कारण क्या था, एंड देन अगेन इफ वी आर एबल टू रिमेम्बर दैट इट्स अ वेपन विच विल नॉट वर्क, सो द मोमेंट विल रिमेम्बर दैट दिस इज अ वेपन विच विल इफ इट्स नॉट गोना वर्क, हमारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वी शुड एक्चुअली वी कैन एक्चुअली कम बैक,
हम कुछ और करेंगे। समझो आपने पानी पी लिया और यू गॉट इन टच विथ रियालिटी, क्योंकि क्रोध व क्षणिक पागलपन है, वो पागलपन अगर आपका 15-20 सेकंड में कम हो गया तो फिर आप राइट टाइप ऑफ रिएक्शन भी दे सकेंगे। और कहीं और एक अच्छी युक्ति है, गहरा सांस लो। एक बार मेरी एक वर्कशॉप हुई थी, तो जिसमें एक टीचर ने कहा कि मुझे इतना गुस्सा है कि एक बार मैंने अपने प्रिंसिपल को पीट दिया और फिर कोर्ट में केस हो गया, करीब 10 साल तक मुझे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, और ये सारी प्रक्रिया में मैं अंत में अभी यह सीखा हूं कि जब क्रोध आए तो 4-5 गहरे सांस लो, तो उससे भी एक समय मिल जाता है, और समय मिलने के बाद आप राइट रिएक्शन दे सकते।
हाँ, वो एक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो एक्शन ही हो गया, इतना एक्सट्रीम केस था। तो डॉक्टर गिरीश पटेल, आज पूरा हमने ये जानने की कोशिश की कि गुस्सा जो है उसके कारण क्या हैं, क्योंकि कई तरह के कारण सामने आए, सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो कि एक बहुत इनहेरेंट कारण है, इनहेरेंट वजह है, वो ये कि दूसरे मेरी तरह समझें, जो मैं कह रहा हूं उस तरह हो जाएं, तब अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मुझे गुस्सा आता ही है। उसके अलावा एक सात्विक गुस्से की हमने बात उसको ढूंढने की कोशिश की कि दूसरों को चेंज करने के लिए, दूसरे के भले के लिए, कोई अगर झूठ बोल रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तब मुझे गुस्सा आता है। वो सारे गुस्से कहीं ना कहीं एक शस्त्र के रूप में है हमारे हाथ में, जिसका कहीं कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। अगर हमने अन्याय के खिलाफ भी लड़ना है तो गुस्से की जरूरत नहीं है, कई और तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली कड़ी में हम गुस्से की हमने इतनी बातें कर ली है, अब थोड़ा खुशी को भी तलाशने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि गुस्से का एंटीडोट जो है वो खुशी यानी हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस हमारी जिंदगी में कैसे आ सकती है? अभी हमने ये जाना कि गुस्से के कारण क्या है और गुस्सा कैसे हटाया जा सकता है। जैसे कारण पता चलेगा तो हम हटा भी देंगे, जैसे ही हटेगा तो शायद हैप्पीनेस आ जाएगी। तो चलिए इस मोड पर आपसे ये भी कह देते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आपका स्वागत है। आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कैसे जिंदगी में खुशी को हम अपना सकते हैं, तलाश सकते हैं। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Om Shanti Om, I love you so. Om Shanti.